5 बजे एट कैनेडियन कन्वेंशन सेंटर ब्रैम्पटन में। खबर हार आफ्ताब इकबाल अपनी पूरी टीम के साथ आपके शहर ब्रैम्पटन में। टिकट्स और स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल कीजिए 416-526-6800 416-526-6800।
इंसान अपनी जिंदगी में दो आम फैसले करता है, एक घर वाली का और एक घर खरीदने का। घर खरीदने के लिए आपको मॉर्गेज चाहिए होता है और मॉर्गेज के लिए आप कांटेक्ट कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655। अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तब भी आपको मॉर्गेज मिल सकता है और कॉल कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम और आदाब सब सुनने वालों को। हर बुध को 3 से 4 बजे कारोबारी दुनिया और हमारी दुनिया के हवाले से आप प्रोग्राम सैयद आसिफ रजा का देखते हैं और हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। आज हम बहुत सारी आपके साथ बातें करेंगे और आज आपको खास इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है वो लाइव लेके भी जाएंगे वहां पे, कराची भी, इस्लामाबाद भी। सुनते रहिएगा प्रोग्राम। आज का प्रोग्राम में हम आपके साथ मॉर्गेज के हवाले से भी बात करेंगे और उसके आज के रेट्स भी बताएंगे। और जैसा कि आपको पता है नाज़रीन कि ब्रेकिंग न्यूज आज की ये है कि घरों की प्राइसेस GTA के अंदर गिरना शुरू हो गई हैं, अप्रेजल कम आना शुरू हो गई हैं, बिडिंग ऑलमोस्ट खत्म हो रही है और घरों के अंदर बेतहाशा करेक्शन जून के बाद देखने को मिलेगी। प्रोग्राम सुनते रहिएगा, हम इस पर मजीद डिस्कस करेंगे। 416-427-8655 मेरा नंबर है, 416-427-8655। हजबे दस्तूर हम चलते हैं सबसे पहले मॉर्गेज रेट्स की तरफ। आपको पता है कि आज के जो मॉर्गेज रेट्स हैं, बैंक ऑफ कनाडा ने जब से बढ़ाया था तो प्राइम रेट हो गया था 3.20 और अब सुनने में यह आ रहा है साहब कि जून यानी अगला महीना कितने दिन रह गए, 5 दिन 6 दिन के बाद जब जून आएगा, जून के 10 या 11 को मेरा ख्याल है उन्होंने अनाउंसमेंट रखा है, फर्स्ट या सेकेंड बुध है बैंक ऑफ कनाडा का, जिसमें वो अनाउंस करेंगे कि रेट शायद जो बहुत ज्यादा तवक्को है कि बढ़ा दें, बहुत ज्यादा तवक्को है कि बढ़ा देंगे तो रेट आपका 2.55 पे चला जाएगा, 2.55 पे चला जाएगा, सॉरी 3.45 पे चला जाएगा, 3.20 है अगर क्वार्टर बढ़ाया, अगर उन्होंने क्वार्टर बढ़ाया, वो तो अब डिपेंड करता है कि कितना 0.50 बढ़ाते हैं कि 0.25 बढ़ाते हैं, लेकिन अगर उन्होंने क्वार्टर बढ़ाया तो आपका रेट हो जाएगा 3.45 और अगर 0.50 बढ़ा दिया तो आपका रेट हो जाएगा 3.70 प्राइम रेट। तो आप समझ सकते हैं कि फिक्स रेट जो है वो 5% से तजावुज कर जाएंगे, तो जिसकी वजह से जो आपके खास तौर पर जो लोग हैं जो घर खरीदने जा रहे हैं या घर को रीफाइनेंस करने जा रहे हैं वो उनको सोचने का है। और उसके लिए मैं उनसे यही कहूंगा कि अभी भी वो हमें इसके बाद कॉल कर सकते हैं, तहम उनके अच्छे रेट्स के ऊपर प्री अप्रूवल करा के दे सकते हैं। 416-427-8655 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आइए रेट्स हम आपके बाद चल के दोबारा बताएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक और फिर दोबारा प्रोग्राम में वापस आते हैं।
इंसान अपनी जिंदगी में दो अहम फैसले करता है, एक घर वाली का और एक घर खरीदने का। घर खरीदने के लिए आपको मॉर्गेज चाहिए होता है और मॉर्गेज के लिए आप कांटेक्ट कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655। अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तब भी आपको मॉर्गेज मिल सकता है और कॉल कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655।
जी आप लोग इस वक्त यहाँ पर ये खबरें तो हर जगह चली रही हैं कि कनाडा में जो घरों की जो प्राइसेस है उसमें करेक्शन आ रही है और 30 से 40% तक करेक्शन आने की तवक्को है एंड ऑफ द ईयर तक। अभी से ही प्रॉपर्टी की प्राइसेस काफ़ी नीचे जाने लगी हैं। मकसद है कि देखिए ये वो करेक्शन है जो बेतहाशा बढ़ गई थी, जो नहीं बढ़नी चाहिए थी इतनी, यानी अनयूजली जो एक 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 होता है ना कि भाई एक ट्रेंड होता है कि 8-9% एवरी ईयर बढ़ेगा, वो तो भैया 24-29% तक इंक्रीज हुआ है साल में, विच इज़ वेरी अनयूजुअल इकोनॉमी को देखते हुए किसी कंट्री की। तो बहरहाल लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि करेक्शन आएगी भी तो, लेकिन फिर दोबारा, ये तो देखिए ये स्टॉक मार्केट जैसे आप जाते हैं कभी ऊपर, आजकल नीचे गई भी है स्टॉक मार्केट भी, तो कैपिटल मार्केट में लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन रियल एस्टेट अभी भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें करेक्शन तो आ सकती है। यानी आपने जितने का लिया है जो पुराने ले चुके हैं तो अच्छी प्राइसेस के ऊपर, उनको वो प्राइस तो मिल जाएगी, उससे नीचे नहीं जाएंगे वो। लेकिन कहा यही जाता है कि व्हेन द मार्केट इज हॉट, यानी इस वक्त जो है उस वक्त आप कोशिश करें कि अवॉइड करें, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं रेंट पे जा सकते हैं रेंट पे चले जाएं। खास तौर पे बिल्डर्स को आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना है बिल्डर्स के साथ। बिल्डर्स ने क्योंकि उनकी एक मोनोपोली है, वो चाहते हैं कि अपनी मर्जी की प्राइसेस दें। अगर आप कोशिश करके थोड़ा अर्सा अपने आप को रोक लें, रेंट पे चले जाएं, बिल्डर से बुक नहीं कराएं, तो बिल्डर्स के भी थोड़ा सा उनकी भी आंखें खुलेंगी। जब उनके पास बुकिंग नहीं आएंगी तो वो भी लाहमाला मजबूर हो जाएंगे अपनी प्राइसेस को कम करने के लिए। उसके लिए जाहिर बात है आपको अपना दिल मारना पड़ेगा, अपनी प्लानिंग को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा कि अगर आप MLS पे जो आती हैं प्रॉपर्टी की प्राइसेस, उसको मुवाजना करें जो बिल्डर दे रहा है, जो 3 साल बाद या 2 साल बाद क्लोज होंगी, वो अभी से इतनी ज़्यादा प्राइस पे दे रहा होता है कि आपको ये देखना है कि जो MLS पे करेक्शन के बाद जो प्राइस आई है वो 3 साल बाद इतनी चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा कि बिल्डर्स को बिल्कुल आप कोल्ड शोल्डर दिखाएं, मत दें, मत बुकिंग करें, आप रेंट पे चले जाएं 1 साल अभी। बट बिल्डर्स को थोड़ा सा, हाँ कॉन्डो अपार्टमेंट जो आ रहे हैं वो रेंट पे जल्दी लग जाते हैं, उनको अगर आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना है तो आइडियल है इस वक्त इन्वेस्टमेंट कॉन्डोज में करना, क्योंकि वो डाउनटाउन में या GTA के अंदर या ब्रैम्पटन में कहीं पे भी जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो आपके लिए इस वक्त बड़े लुक्रेटिव हो सकते हैं फ्यूचर में। एक तो पहली बात है कि वो रेंट इतना हाई हो गया है कि आपकी इंस्टॉलमेंट उसमें से निकल आएगी अगर आप 20%+ डाउन पेमेंट कर रहे हैं। मजीद मालूमात के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 416-427-8655। इस वक्त तो प्राइम रेट चल रहा है 3.20 और आपको रेट मिल सकता है प्राइम माइनस 60, तो आपका रेट हो जाएगा 2.60। लेकिन फिर से मैं कहता चलूं कि ये वो रेट हैं जो ऑलरेडी इस वक्त ये अनइंश्योर्ड यानी इंश्योर्ड नहीं है। लेकिन अगर आप इंश्योर्ड रेट्स पे जाते हैं तो आपको रेट 2.25 भी मिल सकता है। तो इस वक्त क्या है प्राइम रेट 3.20, अगर आपको प्राइम माइनस 60 मिलता है तो आपका रेट हो जाएगा 2.60, ये है अनइंश्योर्ड रेट। फिक्स रेट इस वक्त 4.09 है उन लोगों के इंश्योर्ड और 4.59 है अनइंश्योर्ड। मजीद मालूमात के लिए, ये 5 साल के रेट हैं फिक्स रेट, मजीद मालूमात के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 416-427-8655। ये एक अनाउंसमेंट मैं करता चलूं, ये प्रोग्राम स्पॉन्सर किया जा रहा है माय कैनेडियन होम रियल्टी ब्रोकरेज। ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड फारूक करामद NED यूनिवर्सिटी से इंजीनियर हैं और यहाँ पे अरसे दराज 20 साल से यहाँ पर से ज़्यादा ब्रोकरेज में रियल एस्टेट में लगे हुए हैं काम में, और इनके पास बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज़ आई हुई हैं, यानी उस कीमत में जिस कीमत में मैं समझता हूँ कि खरीदनी चाहिए इस वक्त। अगर आपको कोई 4.5-5 लाख का डिटैच पुराना विक्टोरियन स्टाइल का घर मिल भी रहा है तो वो आप ले सकते हैं, क्योंकि आप टेक्निकली स्पीकिंग आप लॉट ले रहे होते हैं। बहुत पुराना घर होता है, लिवेबल कंडीशन में होता है लेकिन पुराना होता है। लेकिन अगर उसको डाउन द रोड अगर आप देखें उसके ऊपर आप अपग्रेड करके उसको बढ़ा करना चाहें तो आप स्लोली ग्रेजुअली कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टी की प्राइस अच्छी ऊपर जा सकती है। लेकिन ऑलरेडी 2 मिलियन पे घर लेना और 1.8 मिलियन पे घर लेना, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मौके पर आपको थोड़ा सा अगर ठहर जाएंगे तो आपको और अच्छा घर मिल जाएगा। बहरहाल ये एक आप लोगों का अपना डिसीजन है। 416-427-8655 आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा हम बताते चलें कि सेमी डिटैच एक घर आया हुआ है ब्रैम्पटन में, 4+1 बेड। हाँ, ये एक घर है जिसको आप नजर मार सकते हैं, +3 वॉशरूम, टोटली अपग्रेड। अपग्रेड पता है कितना क्या है? $1,25,000 के अपग्रेड किए हुए। फिनिश बेसमेंट With 1 room एंड वॉशरूम एक्स्ट्रा इनकम पोटेंशियल। इसी किस्म के ये घर लेकर आते हैं, अप्लायंसेज एंड न्यू लैंडस्केपिंग इज अमेजिंग। प्राइस 1.4 मिलियन 1.3 मिलियन नहीं है भैया, 999,000, 1,000,000 से कम है. अगर आप इसको 5-10% पे भी लेना चाहें तो सीएमएससी के जरिए ले सकते हैं. कॉल कीजिए इसको सैयद साहब को 647-885-3664. सैयद साहब को कॉल कर सकते हैं 647-885-3664. बहुत अच्छा घर है ब्रैम्पटन में, सेमी रिटैच, अभी कॉल कीजिए. उसके अलावा हम चलते हैं एक और हमारे स्पॉन्सर हैं नेचर्स मिक्स. जान है तो जहान है. इकबाल फूड में भी अवेलेबल है इसके प्रोडक्ट. ये बिल्कुल नो प्रिजर्वेटिव, नो केमिकल, बहुत हेल्दी प्रोडक्ट है. ये जो आप दाल सेव और चिवड़ा वगैरह खाते हैं, इसके बजाय आप इसका बैग लेकर रख लें. खास तौर पे जो ट्रकिंग और ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज में हैं, आप देखेंगे बहुत फ़ायदा होगा. और ओट्स के जो फ़ायदे हैं, क्योंकि ये ओट्स यहीं लोकली ख़रीदते हैं, आमिश कम्युनिटी वाटरलू से, वहीं से ये हनी लेते हैं और मेपल सिरप और 8 different flavors. आप अपने अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं. नेचर्स मिक्स पे चले जाएं, सिर्फ टाइप कीजिएगा कैनेडियन उस पर, अब तो यूएस में भी है नेचर्स मिक्स, और आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन. बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी प्रोडक्ट है, कोई इसमें केमिकल नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, और ये बेक होता है किसमें, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में. मतलब इसको आप खोल के, ये नहीं कि मैं इसको आप दही के साथ खा सकते हैं, इसको आप वैसे भी खा सकते हैं विदाउट, क्योंकि ये बेक प्रोडक्ट है. जैसे आप और डिफरेंट ड्राई प्रोडक्ट खाते हैं वैसे ही इसको खा सकते हैं. मजीद मालूमात के लिए आप जाएं naturesmix.ca पे. आइए साहब एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और फिर दोबारा प्रोग्राम में आते हैं. और आज हम खास पाकिस्तान को ज्यादा टाइम देंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान को जरूरत भी है और हम चाहेंगे कि उस पर डिस्कशन भी करें. इंसान अपनी जिंदगी में दो अहम फैसले करता है, एक घर वाली का और एक घर खरीदने का. घर खरीदने के लिए आपको मॉर्गेज चाहिए होता है, और मॉर्गेज के लिए आप कांटेक्ट कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655. अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, तब भी आपको मॉर्गेज मिल सकता है. और कॉल कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655. जी आई साहब, आज एक नगमा सुनते हैं. और एक्चुअली नगमा क्या है, ये बड़े अच्छे अशार हैं. और इसके बाद हम दोबारा प्रोग्राम में वापस आते हैं. जी हेडलाइन. इंसान अपनी जिंदगी में दो अहम फैसले करता है, एक घर वाली का और एक घर खरीदने का. घर खरीदने के लिए आपको मॉर्गेज चाहिए होता है, और मॉर्गेज के लिए आप कांटेक्ट कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655. अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, तब भी आपको मॉर्गेज मिल सकता है. और कॉल कीजिए मॉर्गेज सैयद आसिफ रजा 416-427-8655.
इंसान अपनी जिंदगी में दो आम फैसले करता है, एक घर वाली का और एक घर खरीदने का। घर खरीदने के लिए आपको मॉर्गेज चाहिए होता है और मॉर्गेज के लिए आप कॉन्टैक्ट कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655। अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तब भी आपको मॉर्गेज मिल सकता है और कॉल कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655।
जी सावाइन, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, अब तो आजकल तो देखते भी हैं आप टीवी पे, कारोबारी दुनिया और हमारी दुनिया के हवाले से। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि थोड़ी देर में हमारे साथ पाकिस्तान से और इस्लामाबाद और कराची से दो एनालिस्ट जुड़ेंगे और साथ साथ हमारे पास कनाडा से भी, आपके लिए भी लाइन्स खुली हुई हैं अगर आप प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं। हमारा नंबर है 416-620-1778, आप डायरेक्ट प्रोग्राम में शिरकत भी कर सकते हैं। जी यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में अगर हम देखें, ये एक ऐसी सिचुएशन आन पड़ी है जो हमने पहले कभी नहीं देखी। बहुत सारे प्रोटेस्ट हमने देखे, बहुत सारी तहरीकें देखी, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट अभी इस वक्त हो रहा है, जो रैली निकली है आजादी मार्च के नाम से, ये देखते हमने नहीं देखी अभी तक कि हर गली कूचे से, हर गांव से, हर शहर से लोग निकल पड़े हैं और एक ही उनके जज्बा है कि हमें ये करप्ट हुकूमत नहीं चाहिए। इसके ऊपर गुफ्तगु होगी। आइए उससे पहले एक हम चलते हैं क्लिप की तरफ और उस क्लिप को सुनने के बाद क्या उनके अंदर जज्बा है इन अशार से आपको पता चल जाएगा। आगे चलते हैं और फिर दोबारा प्रोग्राम में हम वापस आते हैं, पहले एक क्लिप सुन लेते हैं।
ऐ शहीद मुल्क मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ओ आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचाए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा इधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, हाथ जिन में हों जुनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, हम तो घर से ही थे निकले बांध कर सर पर कफन, जहां हथेली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम, जिंदगी तो अपनी महिमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यूं खड़ा मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्नाए शहादत भी किसी के दिल में है, दिल में तूफानों की टोली और नसों में इंकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना आज, दूर रह पाए जो हमसे दम कहां मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वो जिस्म भी क्या जिस्म है जिसमें न हो खूने जुनू, क्या लड़े तूफान से जो कश्ती साहिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
इंसान अपनी जिंदगी में दो अहम फैसले करता है, एक घर वाली का और एक घर खरीदने का। घर खरीदने के लिए आपको मॉर्गेज चाहिए होता है और मॉर्गेज के लिए आप कॉन्टैक्ट कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655। अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तब भी आपको मॉर्गेज मिल सकता है और कॉल कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655।
जी सामाइन, आपको जैसा कि पता है कि हम अब लाइव जा रहे हैं और एक तहरीक, एक आज़ादी जो हमने फरंगियों से पहले 1947 में ली थी और अब हम फरंगियों के साथियों से आज़ादी की तरफ एक लेके जा रहा है इमरान खान। एक ऐसी मैं समझता हूँ कि सूरत हाल है पाकिस्तान में जो पहले ना कभी देखी ना सुनी। इस वक्त बहुत ही हमारा मुल्क नाजुक मराहिल से गुजर रहा है और हमें दुआ करनी चाहिए सबकी हिफाजत के लिए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। जो जो लोग बाहर निकले हुए हैं, इवन पुलिस वाले भी अपने, हम समझते हैं कि उनकी भी अल्लाह ताला हिफाजत करे। और ख़ास तौर पे जो पॉलिटिशियन हमारे जो समझदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे, उनको चाहिए कि वो एक ऐसी ख़ास तौर पर एक ऐसी हिकमत अमली से कायम करें और लें जिससे इस मसले का हल निकाला जा सके। उसी पे बात करने के लिए हमने अपने पॉलिटिकल एनालिस्ट लिए हुए हैं, एक इस्लामाबाद से सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, मैं समझता हूँ कि बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सियासत पे, पुराना ताल्लुक है सियासत से। अजीज़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से लाइव कवरेज के लिए। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ भाई। जी अजीज़ साहब, आप आवाज़ आ रही है आपको?
बिल्कुल आ रही है।
जी जी बिल्कुल, अब फुल फर्स्ट क्लास आ रही है। और दूसरी तरफ हमारे साथ कराची से हमारे साथ एक और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वकार मदनी साहब, कराची की सूरत हाल हमसे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वकार साहब।
वालेकुम अस्सलाम आसिफ, क्या हाल है आपके?
अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ कनाडा से यहाँ से तौसीफ सैयद तौसीफ साहब मौजूद हैं जो यहाँ पे बहुत एक अच्छा अखबार निकलता है उर्दू पोस्ट, उसके एडिटर इन चीफ हैं और काफ़ी अरसे से ये अखबार निकल रहा है और मैं समझता हूँ कि रंगीन यानी कलर अखबार निकालने में इनका पहला हाथ था तौसीफ भाई का कनाडा के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम आसिफ साहब।
चलते हैं हम सबसे पहले कराची है और इस्लामाबाद की तरफ। तौसीफ भाई, जो इस वक्त हम लाइव थोड़ा सा पूछ लें अपने दोनों तजिया निगारों से कि कराची इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, सबसे पहले हम चलते हैं अजीज भाई की तरफ। अजीज साहब, इस वक्त आप हमें बताएंगे कि इस्लामाबाद में क्या गहमा गहमी और क्या सूरत हाल है?
आसिफ, इस्लामाबाद की सूरत हाल तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई है। इमरान खान का कंटेनर एंड 11 किलोमीटर लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ कार्स एंड पीपल, वो पीछे उसके आ रहा है एंड वो इस्लामाबाद की टोल प्लाजा को क्रॉस कर लिया है हेडिंग टूवर्ड्स डी चौक। मगर डी चौक के हालात इस वक्त इतने खराब हैं क्योंकि पुलिस ने इतनी जोर की वो टीयर गैसिंग की हुई है, इतनी बसी पैमाने पे टीयर गैसिंग हो रही है। अगर आप देखें तो उधर डी चौक से पहले जो एरिया है उसके अंदर जो दरख्त है उनके ऊपर भी आग लग गई है और वो ऐसे कह रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स ने आग लगाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो शेल गिरने से वो आग लग गए। इतनी खूबसूरत एरिया है वो और ब्लू एरिया के सामने और वो सारा उधर दरख्त जल गया है। कल सुबह वो दरख्त के कैरकेसेस होंगे और अब पता नहीं जब इमरान खान का वो आएगा प्रोसेशन इनटू द डी एरिया विसिनिटी, अगर इसी किस्म की टीयर गैसिंग हो जो अभी बेदर्दी से की जा रही है, औरतें बच्चे बूढ़े सब हैं वो सारे अफेक्ट हो रहे हैं, तो फिर क्या बनेगा? अल्लाह हमारे सबको खैर करे, बट दिस इज अ रेवोल्यूशन इन द मेकिंग। बिल्कुल एक पीसफुल रेवोल्यूशन है और इसके बाद आज के ये जब इवेंट खत्म होगा, कल सुबह होगी, उसके बाद अगली सुबह होगी, उस वक्त तक ये सब कुछ नतीजा आ जाएगा। पाकिस्तान बिल्कुल आपको बदलाव मिलेगा।
मैं अभी अजीज भाई आपके पास आता हूँ। अजीज साहब, हम चलते हैं वकार मदनी साहब के पास कराची में। कराची वाले क्या कर रहे हैं इस रैली के लिए? वकार साहब,
कराची में जिस तरह से इस्लामाबाद का अजीज साहब ने हाल बताया, कराची में भी यही सूरत हाल रही, लेकिन ये कि उन्होंने एक मकाम मुख्तस किया था नुमाइश, जो एज यूजुअल एक प्रोमिनेंट प्लेस है इन तमाम इस तरह के तमाम एहतजाजी मुजाहरों का। सुबह काफी बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंच गए थे अपने फैमिलीज के साथ और उन्होंने वहां पर एहतजाज शुरू कर दिया, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बड़ी अलमबरदार है। बदकिस्मती से उसने भी वही रोल प्ले किया जो इस्लामाबाद में इंतजामिया ने किया, और उनके ऊपर शदीद शेलिंग और आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज किया लोगों को डिस्पर्स करने के लिए। पुरमन मुजाहरीन पे उन्होंने अपना जो कहना चाहिए जबर रवा रखा, और उसकी वजह से दिन भर आग मचोली कैफियत रही। अभी भी जो है काफी बड़ी तादाद में लोग वहां पर बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अपना रिकॉर्ड करा रहे हैं, और कराची भी उसी तरह पाकिस्तान के तमाम लोगों के साथ शामिल है मुजाहरे में, जिस तरह बाकी तमाम पाकिस्तानी इस वक्त एक जिस तरह साहब ने कहा कि एक नई तारीख सियासत में रकम करने के लिए खड़े निकले हुए हैं, तो कराची शाना बशाना उनके साथ।
मैं वापस चलूंगा इस्लामाबाद, तौसीफ भाई आपके पास आने से पहले हम चाहेंगे तौसीफ साहब अजीज साहब से ये पूछें। अजीज साहब, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी तो आ गई थी कि डी चौक पे पुर अमन एहतजाज करने की इजाजत है, उसके ऊपर कुछ हुआ?
यार, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को बिल्कुल ही डिसरिगार्ड किया गया, इन्होंने बिल्कुल उसको ओबे नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जैसे कि कुछ है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एग्जिस्ट, और उसकी रूलिंग कहीं कुछ नहीं हुआ। 10 बजे अब से 2 घंटे पहले इनकी नेगोशिएटिंग टीम मिली थी दोनों साइड्स की, उसमें से इन्होंने 2 PTI के नेगोशिएटर्स को गायब कर दिया, वो पता नहीं डिसअपियर हो गए और वो मिल नहीं रहे थे। उसके बावजूद 2 नेगोशिएटर्स उधर पहुंचे डिसाइडेड प्लेस में, वो नहीं थे, और पीछे से ये कहने लगे कि हम 4 लोग पहुंचे थे मगर वो एक दूसरे से मिले नहीं। वो एक तरफ से तो एक बात हो गई, मगर जो टीयर गैसिंग बंद करना था या जो कुछ भी जितनी टीयर गैसिंग हो रही थी उससे 3-4 गुना ज्यादा हो गई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बावजूद। और ना सिर्फ ये बल्कि कराची के अंदर वकार ने नहीं बताया, उन्होंने स्ट्रेट फायरिंग भी की है, और उसके अंदर कितने लोग हलाक हुए हैं, मगर एक PTI के मेजर लीडर टीवी के ऊपर अभी इंटरव्यू दे रहे थे, वो बता रहे थे कि कराची इंक्लूडिंग कराची इस्लामाबाद एंड अदर पार्ट्स ऑफ पंजाब 5 लोग शहीद हो चुके हैं अब तक इस तो ये वायलेंट तो हो चुका है मगर इसके अंदर फेटलिटीज भी आनी शुरू हो गई है।
अल्लाह
तो इस्लामाबाद के अंदर कोई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को कोई डिसरिगार्ड किया गया टोटली बाय द गवर्नमेंट।
सामीना प्रोग्राम और नाजरीन, इस वक्त रेडियो पे भी आप सुन रहे हैं और टीवी पे भी देख रहे होंगे कारोबारी दुनिया और हमारी दुनिया के प्रोग्राम से पेश किया जा रहा है। अगर आपको उसमें हिस्सा लेना है या कॉल भी कर सकते हैं 416-620-1778। हम अपने लोकल कैनेडियन एनालिस्ट की तरफ चलते हैं। तौसीफ भाई, आप क्या समझते हैं कि ये जो डर और खौफ की वजह से हुकूमत जो है ये शेलिंग कर रही है और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को भी नजरअंदाज कर रही है?
आसिफ भाई, सुप्रीम कोर्ट ने तो S9 की जगह का हुक्म दिया था, और वो जगह चूंकि छोटी है और वो इस वक्त PTI के लोगों को काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि उनके ख्याल में लोग ज्यादा आएंगे श्रीनगर हाईवे से, और वहां पे चूंकि इतवार बाजार भी आपको पता है। अभी बात ये है कि मैं सिर्फ इस पे बात करूंगा कि PTI ये जो जुलूस निकाल रही है या धरने का इरादा है, तो 2014 में स्टार्ट तो धरनों की रवायत तो PTI ने डाली, लेकिन तहरीकों कि अगर हम तारीख देखें पाकिस्तान की तो वो तो 60s के दौर में अयूब खान से होती हुई जियाउलहक से और नवाज शरीफ के दौर में बेनजीर के दौर में सब एक दूसरे के मुखालफत में जलसे जुलूस करते रहे,
और बड़े जलसे
धरने सुने ना, धरना और कंटेनर की पॉलिसी तो जाहिर है PTI ने स्टार्ट की थी, उसके बाद उसी पॉलिसी को लेकर मौलाना ताहिरुल कादरी भी एक दौर में गए थे, उसके बाद नवाज शरीफ को जब निकाला गया तो उन्होंने GT रोड पे धरने का और वो जुलूस का निकाला। बात यह है कि जब लोग इख्तदार से अलग होते हैं तो इन्हें धरना और ये एहतजाजी तहरीकें याद आती हैं, सिर्फ लफ्ज चेंज होते हैं। जो लोग आज टेबल के इस जानिब होते हैं वो उधर आ जाते हैं और उनके अल्फाज वही होते हैं जो माजी में थे। पिछले साल आप हुकूमत के बयान उठा के देख लें, वही बयान इस वक्त मौजूदा जो जमात ने इख्तदार में
हमें एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर करने के लिए देखना पड़ेगा ना सर के
नहीं ये जो एप्पल ऑरेंज पाकिस्तान में
तो खान का जो धरना है उसकी तो हुकूमत सही चल रही थी,
बिल्कुल सही चल रही थी,
हटाया गया जी।
नहीं नहीं, अब ये बताएं वो हमें ना किस चीज से आजादी दिलवाएंगे, पहले तो ये तय करना है कि हमें 47 के बाद अब दूसरी जो आजादी जो हकीकी आप कह रहे हैं वो मिलेगी, वो हमें किससे मिलेगी, कौन देगा? मसला
हमारे
एस्टेब्लिशमेंट देगी, लोग देंगे, किससे मिलेगी?
ठीक है,
और देखे ना गुलामी से आजादी का जो सफर है ये तो हम तय कर रहे हैं अभी तक।
आपका सवाल अजीज साहब से पूछते हैं। अजीज साहब ये पूछ रहे हैं कि भाई किस चीज से आजादी के लिए हम जा रहे हैं करने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट से गवर्नमेंट से किससे आजादी मिलेगी हमें?
اور کتنی کامیابی کے امکانات ہیں؟
آصف ہمیں آزادی جس چیز سے یہ لینا چاہ رہے ہیں از استعماریت سے. بیسیکلی ہمارے ملک کے اندر بہت پہلے سے 1952 اور 56 سے دو پاورز نے ہمیں بالکل مطلب عوام کی طاقت نہیں تھی. لکھا ضرور ہوگا کانسٹیٹیوشن کے اندر سوورنٹی بلانگس ٹو دا پیپل آف پاکستان, مگر یہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ آرمی رول پلس فورن رول. ہم جب اس کے اندر سیٹو سیٹو کے اندر 1954 میں گئے, ادھر سے لے کر امریکہ ہمارے ملک کو رول کرتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا تھا کہ تھری از رول پاکستان, اللہ آرمی اینڈ امریکہ. ایک طریقے سے یہ جوک کی طریقے سے کہا جاتا تھا, مگر اصل میں اللہ تو رول کرتے ہی ہیں, مگر آرمی اور امریکہ ور دا ریئل رولرز آف پاکستان. اب آرمی ان کنائیونس ود دی, میں تو اس کو مل اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں, دا بیوروکریسی اینڈ ٹو این ایکسٹینٹ جوڈیشری. ایک طریقے سے پاکستان کو رول کرتا تھا, پالیٹیشنز وار آلویز یوزڈ ایز پونز. تو پالیٹیشنز اس دفعہ یہ جیسے عرب اسپرنگ ہوتا تھا, ناٹ ایز مچ ایز دا عرب اسپرنگ, مگر کسی حد تک مماثلت رکھتا ہے عرب اسپرنگ سے یہ والا ریولوشن. میرے خیال سے آصف اس کے اندر میرے خیال سے عمران خان کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے اتنا گراؤنڈ سویل آف اپرائزنگ ہوگا. عوام تھکی ہوئی تھی, بالکل ایک طریقے سے تھکی ہوئی تھی, اور یہ موقع ملا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں پتا تھا اور عمران خان خود کو بھی نہیں پتا تھا اتنا عوام کی ابسرڈ جائے گا.
ایک مسیحا ان کو مل گیا, مسیحا کی تلاش میں تھے اور ان کو ایک مل گیا. ایک دو کالر ہمارے ساتھ ہیں, پہلے لیتے ہیں یہاں پہ لوکل کالر. جی السلام علیکم, کون صاحب بول رہے ہیں؟
جی وعلیکم السلام.
ہلو جی جی, کون صاحب بول رہے ہیں؟
جی جاوید اقبال بول رہا ہوں.
جی جاوید بھائی,
جی جی ابھی نیوز آ رہی ہے کہ ڈی چوک پہ دوبارہ بہت بری طرح گیس کی شیلنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بگا رہے ہیں لیڈیز اور
کریں گے نا.
اچھا دوسرا ایک منٹ, کون توصیف صاحب بول رہے ہیں؟
جی جی بتائیں بتائیں.
آپ توصیف صاحب پلیز آپ تھوڑا لسن کر لیں, آپ جب بھی کوئی بولنے لگتا ہے تو
آپ سوال کریں نا. آپ ہاں جی
ہاں جی, آپ کیسے کمپیئر کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ کو, اور انہوں نے دو دفعہ مارچ کیا, فضل الرحمان نے دھرنا بھی دیا,
ہم نے بھی
بولیے. آپ پچھلے 20 سال سے میں آپ کو جانتا ہوں, آپ نے ہمیشہ اردو ٹائم میں نون لیگ کو ریپرزینٹ کیا. آپ پلیز لسن ون منٹ اینڈ دین.
جاوید بھائی یہ میں اس کی تائید نہیں کروں گا. توصیف بھائی ایک ایسے صحافی ہیں جو
ہر نہیں کوئی صحافی نہیں, نون لیگ غلط بات کر رہے ہیں, یہ غلط بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں صحافی نظر میں غلط ہے نا بھائی, ہم پی ٹی آئی کا کیسے کرنے کا مذاق کر رہے ہیں آپ لوگ.
پرویز الہی کا بیان ہے کہ معیشت پہچانے کے لیے
پرویز الہی
نکالیں جلد سے جلوس.
آپ بات ہی نہیں کرنے دیتے, جب بھی کوئی پی ٹی آئی کا معاملہ تھا آپ آگے سے انٹرپٹ کرتے ہیں. جاوید
بھائی بابا اور بھی کالر ہیں, پھر میں آپ کو بعد میں لوں گا. توصیف بھائی ایک اور کالر کو لے لیں. جی السلام علیکم.
جی جی لے لیں.
ہیلو, ہمارے ساتھ کراچی سے اور اسلام آباد سے پولیٹیکل انالسٹ بھی ہیں اور یہاں پہ توصیف بھائی بھی. آپ کو کچھ سوال ہے؟
جی میں توصیف صاحب کس سے بات کر رہا تھا.
جی جی بتائیے.
جو کچھ بھی بولنا ہو نا, سوال ہو اگر یہ آصف صاحب کا, تو ان سے لکھوا لیں کیا جواب دینا ہے. ان کا سوٹ جو کرے گا وہی اس سنائیں گے وہ آپ کو.
میں نے
جو شخص جو چیز سننا چاہتا ہے نا اس کے خلاف آئے گا نا, تو ہمارے دشمن ہے.
سنے سنے حقیقت سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہے. اس سے پہلے سیلنگ نہیں ہوا ہے, اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہوئی ہے, صرف اسی دور میں ہو رہی ہے.
ہر دور میں ہوئی ہے, ہر دور میں
اسی دور میں ہوئی ہے. کیا جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟
نہیں, اگر آپ دیکھیں گاؤں گاؤں گلی گلی شہر کہیں جلوس نہیں نکالے گئے, لوگ باہر نکل کے نہیں آئے.
میں نے نہیں نکالا ہے
کراچی کے حد تک, یہ تو پورے پاکستان کی بات.
بات یہ ہے کہ یہ دھرنا جو چل رہا ہے نا, یہ ان کا عیالت حق تو ہے لیکن پرتشدد نہیں ہونا چاہیے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ غلط ہے, انہیں سمجھ نہیں آئی.
کیا کیا بولنا ہے؟
وہ جو جن صاحب نے سوال کیا ہے نا, وہ تو خیر سوال ہی غلط تھا. وہ تو ون وے سائڈڈ کہہ رہے ہیں. ہماری نہ تو کوئی پارٹی ہے, نہ ہم کسی کے حق میں بات کرتے ہیں. حکومت جو کر رہی ہے اس وقت چیلنج جو بھی وہ غلط ہے, اور پی ٹی آئی کی طرف سے اگر
بہت بہت شکریہ سر آپ کا. یقین جانے ایسے کوئی بات نہیں, نہ ہم کوئی کے دیتے ہیں نہ جواب مانگتے ہیں. ہم صرف ان سے پوچھ رہے تھے اور اس کا وہ جواب دے رہے ہیں.
توصیف بھائی, گرفتاریاں لاٹھی چارج غلط ہے, حکومت زیادتی کر رہی ہے. یہی کام پچھلے سال حکومت نے کیا تھا جب مولانا فضل الرحمان نے جلوس نکالا تھا, وہ بھی غلط ہے. ہم آج بھی اس کو غلط کہہ رہے ہیں. ہم پرتشدد سیاست کے خلاف ہیں, ہم پرامن احتجاج کے حق میں ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو چاہے کسی بھی جماعت کا ہو, جس سے عوام کو تکلیف نہ پہنچے, جس سے عوام کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے. آپ کا یہ آئینی حق ہے, سپریم کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ دیتی ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے حق میں فیصلہ آیا. جب خلاف آتا ہے آپ سپریم کورٹ کو بھی, یعنی ہر شخص وہ جو سننا چاہتا ہے وہ بات صحیح ہے کہ وہ کہتے ہیں یار یہ میری سوچ کے خلاف کیسا فیصلہ.
پھر سے آپ سے یہ سوال کروں گا, ابھی میں پوچھتا ہوں کہ باقی حکومتوں میں اور اس عمران خان کے پروٹیسٹ میں فرق کیا ہے. یہ ہم چلتے ہیں, پہلے چلتے ہیں ہم وقار مدنی صاحب کی طرف. وقار صاحب, آپ ہمیں بتائیں گے کہ فرق کیا ہے ان دھرنوں کا؟ جی
دیکھیں, آصف پہلی بات تو یہ کہ جو سوال کرنے والے جو ہیں ان کو پورا موقع ملنا چاہیے اپنا سوال کرنے کا, بجائے کہ ہم ان کو انٹرپٹ کریں. پہلی بات. دوسری بات,
یہ سوال ہو ان کا تبصرہ نہ ہو نا.
فرق ہے عوام, فرق ہے عوام.
اچھا,
یہ بنیادی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. پہلے قیمے والے نان, بریانی اور پسوں میں بھر کے لانا, یہاں لوگ فیملی بچے, آپ ٹی وی کی دیکھیں, آپ اس کو سوشل میڈیا پہ دیکھیں, چھوٹے چھوٹے دو دو سال تین سال کے جو بچے ہیں وہ پروٹیسٹ میں شامل, وہ آنسو گیس دیکھ رہے ہیں پہلی مرتبہ اپنی زندگی کے اندر. ایک عورت ایک سال کے بچے نے گود میں بیٹھی ہوئی نمائش چورنگی کے اوپر. تو مطلب یہ فرق عوام ہے. پہلے کی تحریکیں جو ہوتی تھی, 77 کی تحریک میں نے خود دیکھی ہے, اس میں پبلک شریک تھی, لیکن اس کے بعد جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں اس کے اندر عوام کی اتنی پذیرائی شامل نہیں تھی. تو بنیادی فیکٹر جو آصف تمہارا سوال تھا وہ یہ ہے کہ چھ یعنی سکس ڈائمینشنل فیسلٹیٹر جو اس پوری تبدیلی ریجیم چینج میں شامل تھے, ان کی ایکسپیکٹیشن میں کہیں عوام نہیں تھی کہ اس طرح باہر نکلے گی. اور جیسے
پاکستان تو سب جماعتوں کا ہے نا, آپ کی بات بالکل صحیح ہے بجا ہے, لیکن یہ جلاؤ گھراؤ کی سیاست نہ ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے.
آصف صاحب آپ اپنی باری کو بولیے گا پلیز, مجھے اپنے پہلے کرنے دیں. تب فرق جو ہے وہ عوام ہے. یہ جو دباؤ حکومت محسوس کر رہی ہے اس وقت, جو امریکن تک محسوس کر رہے ہیں اس کو, ویسٹ یورپ محسوس کر رہا ہے, آئی ایم ایف بھی محسوس کر رہا ہے, یہاں تک کہ وہ جو کمٹ کر چکے تھے کہ وہ فیسلیٹ کریں گے نئی گورنمنٹ کو, وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اپنے کہے ہوئے وعدوں سے. آپ دوستوں کو دیکھ لیں, سعودی عرب کو دیکھ لیں, یو اے ای کو دیکھ لیں, چائنا کو دیکھ لیں, کیوں ہٹے ہیں یہ لوگ پیچھے امپورٹ حکومت کی سپورٹ سے؟ اس لیے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ عوام جو روڈ پہ بغیر کسی سپورٹ کے یعنی پولیٹیکل پارٹی کی انویسٹمنٹ کے باہر آ گئے. یہ ہے وہ بنیادی فرق, یہ تبدیلی ہے, یہ انقلاب ہے, یہ تحریک نہیں ہے, یہ انقلابی تحریک ہے.
میں چلوں گا ایک کالر کی طرف پہلے, اور ہمارے
کالر سے یہ کہہ دیں کہ پلیز صرف سوال کریں ذاتیات پہ یا پارٹیزم پہ نہیں, ملک کے اس حوالے سے جو آئینی قانونی.
جناب آپ کے پاس کوئی سوال ہے سر؟ ہیلو کون صاحب, آواز کٹ گئی میرے خیال میں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی
میرا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب لوگوں کو روزگار اور جو انصاف ہے وہ پہنچا سکیں گے دوبارہ یا نہیں؟ مقصد اتنے لوگ تھے جن کے اوپر نیب کا کیس تھا, اس کو انہوں نے سزا نہیں دلوائی. مقصد یہ ہے کہ یہ کب تک چلے گا؟ یہ مقصد یہ کوئی نظام کو سیدھا سدھاریں گے یا نہیں سدھاریں گے؟ پہلی چیز تو یہ ہے. مقصد یہ کہ جب تک کہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا, صوبے نہیں بنیں گے, دوسری چیزیں ترقی نہیں ہوگی ملک میں, تو باقی چیزیں مقصد یہ ہے کہ وہ ڈکٹیٹر بن کے پھر وہی ڈکٹیٹر بن کے کسی کی بات نہیں سنیں گے وہ, تو یہ بات تو بالکل غلط ہے. مقصد یہ کہ کوئی سسٹم کو سدھارے تب اس کی بات تب صحیح.
یہ سر صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کا سوال بہت اچھا ہے, اس کا جواب آصف بھائی میں دوں یا کوئی اور دے گا؟
بتائیے پہلے.
جی بات یہ ہے کہ پچھلے 3.5 سالوں میں جن لوگوں نے جو تو جماعت سے پی ٹی آئی سے محبت رکھتے ہیں ان کی نظر میں تو سب کچھ اچھا ہے, سب کچھ آ رہا ہے, لیکن جو مخالفین ہیں, یہ میرے نہیں ہے, مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے 3.5 سال میں ایسی کوئی ٹھوس پالیسی نہیں دی جس سے عوام کو فرق پڑا. دیکھیں یہ ملک جو ہے یہ سب کا ہے, صرف اپوزیشن کا نہیں ہے, صرف حکومت کا نہیں ہے, پی ٹی آئی کا نہیں ہے, سب لوگ اس میں شامل ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے آئینی طور پر جلاؤ گھراؤ نقصان پہنچاؤ کی جو پالیسی ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے. دیکھیں نا, اب 4-5 لوگ اگر جان سے گئے تو اس کا ذمہ دار طے کیا جائے کون ہے, اور یہ ماضی میں بے شمار دفعہ ہوتا رہا ہے. لوگ معصوم ہیں, محبت میں نکل آتے ہیں, چلتے ہیں, لیکن اس کے نتائج آج تک کچھ نکلے؟ اب یہ بتائیں دھرنے سے نکلے گا کیا, تاریخ تو ان کو ملنے نہیں لگی کہ جی حکومت کا لا کے ہاتھ جوڑ کے کہے کہ جی ہم آپ کو 3 مہینے کا ٹائم مانگ رہے ہیں, خدا کے واسطے ہمیں ٹائم دے دیں. یہ تو نہیں ہونے والا. وہ کہہ رہے ہیں ٹائم پہ ہی ہم الیکشن کرائیں گے. اور یہ عدم تشدد کی تحریک کے ہم حامی ہیں. ایک جگہ ہو پنڈی میں اگر ہے لیاقت باغ دے دیں, اسلام آباد میں F10 دے دیں. اب انہوں نے سپریم کورٹ نے ایک جگہ تو کہا ہے, مگر وہ اس پہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں ہمیں سوٹ نہیں کرتی. سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی مزید 2 دن میں اور آئے گا, اور آئین اور قانون کے تحت اس پہ عمل کیا جائے گا. تو سب لوگ یعنی ان کا حق ہے, حکومت غلط کرے گی تو ہم اس کو بھی مذمت کریں گے. حکومت غلط کر رہی ہے, گرفتاریاں جو کر رہی ہے اور لوگوں کو پکڑ دھکڑ اور آنسو گیس اور شیلنگ اور لاٹھی چارج, ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ نے آج اس طرح کی لینگویج استعمال کی ہے اور اتنا سخت زبان استعمال کی ہے, لیکن یہ سخت زبان کا کلچر پچھلے کئی سالوں سے ہماری ہاں ایک روایت بنتی جا رہی ہے, اس کو بھی ختم کرنا چاہیے بھائی.
جی میں چاہتا ہوں. ٹھیک ہے توصیف بھائی, چلتے ہیں ہم عزیز صاحب کی طرف. عزیز بھائی یہ بتائیے کہ یہ جو اس کے جو نتائج ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ایک جگہ بیٹھ کے صرف کر لیتے, پورے ملک میں جو کیا ہے اس سے انتشار پھیل رہا ہے. جی عزیز صاحب
دیکھیے, یہ انتشار ایسے نہیں پھیلتا, اس کے امپاورمنٹ آف دا پیپل ہے. اس کے اندر آپ نے اپنے عوام کو اپنے ان کو حق دیا ہے اپنی بات کرنے کی. آج ایسے نہیں ہو سکتا کہ مریم نواز آئے ٹی وی کے اوپر پریس کانفرنس کہے اور کہے کہ اس پورے پروٹیسٹ میں 200 سے زیادہ لوگ نہیں آئے تھے. یہ نہیں, 200 سے اب یہ کہہ 20 لاکھ بھی نہیں تھے اور 200 بھی نہیں تھے. تو اس قسم کے جب آپ ان ریئلسٹک بات کریں گے تو اس کے اندر کوئی وہ نہیں بنتا, طریقے سے کہیں وہ نہیں بنتی, مڈل گراؤنڈ نہیں بنتا کہ جس کے اوپر کوئی بات ہو سکے اور کوئی بات آگے بڑھ سکے. نا آپ کا جو سوال ہے کہ اس کے آگے بڑھ کے کیا ہوگا, آگے بڑھ کے دیکھیں اس کے اندر اس ملک کے جو وہ کہتے ہیں نا دا اسٹیبلشمنٹ, ان کو انفارچونیٹلی پھر بیچ میں آنا پڑے گا, کیونکہ یہ ملک کو اس طریقے سے نہیں چھوڑ سکتے. اچھا اب وہ جتاؤ گھیراؤ کی بات ہے, میرے خیال سے پی ٹی آئی نے ایک پتھر بھی نہیں مارا. آئی ایم ناٹ اے پی ٹی آئی سپورٹر, میں کبھی بھی عمران خان کا اس طریقے کا سپورٹر نہیں تھا اور ہوں. آئی ایم اپوز ٹو دی یہ جو نواز شریف کی پی ایم ایل این ہے یا زرداری کی پیپلز پارٹی ہے, بیکاز وہ کافی حد تک جو ان کے اوپر الیگیشن ہے کرپشن کی وہ صحیح ہے. اب وہ جب پوچھتے ہیں کہ ان کو وہ کیوں نہیں کیا گیا, کنوکٹ کیوں نہیں کیا گیا, یہ کورٹس کا مسئلہ ہے. یہ اس کے اندر گورنمنٹ نے ایک دفعہ کیس کورٹس کو دے دیا تو وہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکی کہ کیا کورٹ کتنی جلدی کرے گا کتنی دیر سے کرے گا. یہ کورٹس کا مسئلہ ہے, کورٹ کو انہوں نے کافی مس یوز کیا ہے. ان کی پریروگیٹو وہ یہ کہیں کہ ہم آج حاضر نہیں ہو سکتے, ہم بیمار ہیں, ہم باہر جا رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہمارا وکیل نہیں اویلیبل ہے, یہ لمبا کھینچ دیتے ہیں. یہ تو یہ اس کے اندر عمران خان کی گورنمنٹ کی کوئی وہ نہیں تھی کہ کیوں کنوکٹ نہیں ہوا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری یہ بات ہے کہ یہ جلاؤ گھیراؤ کی تحریک نہیں ہے, یہ گاؤں گاؤں شہر شہر سے لوگوں کو امپاور کیا گیا ہے کہ اپنے وہ بولے. یہ دیکھیں عمران خان کو یہ گاڈ سینڈ آیا ہے نو کانفیڈنس موشن کا, کیونکہ یہ دیوا ایڈی بالکل ہی پاپولیرٹی ان کی ختم ہو گئی تھی, اور یہ میرے خیال سے اگر یہ 16 مہینے اور چلتے تو یہ 20 سیٹ کی بھی گورنمنٹ نہیں تھی اگلے الیکشن کے اندر. یہ اس طریقے سے ڈونلڈ لو ان امریکہ اور جو کچھ بھی ہوا سائبر جو کچھ بھی وہ اور ایک بیانیہ انہوں نے بنایا جس کو عوام نے ایکسیپٹ کیا, اس کے اندر ڈس لائک اینڈ ہیٹریڈ آف دی ادر پارٹیز بہت زیادہ اس کی بھی وہ ہے فیچر ہے. اس وجہ سے ایک ان کو گراؤنڈ سویل آف پاپولیرٹی ملی. اس کے بعد دوسری چیز آج جو رانا ثناء اللہ نے کیا ہے, اب انہوں نے پی ایم ایل این کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے پنجاب کے اندر, جو ان کا ایک طریقے سے ہارٹ لینڈ تھا. اس کے اندر عورتیں بچوں ان کے اوپر ٹیئر گیسنگ اس بری طریقے سے کی ہے, ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے اور ان کو چلنے بھی نہیں دیا ہے. دنیا کے اندر پروٹیسٹ ہوتے ہیں, کہیں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ فائرنگ اور وہ ہوتا ہے؟ لندن کے اندر ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے باہر ہر ہفتے ویکینڈ کے اوپر اتنا بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ عوام بیوقوف ہے, باشعور نہیں ہے, وہ بالکل ان کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے عوام کی समझ को हम डिसमिस कर दें कि इनको किसी ने मिसलीड किया है, वो बिल्कुल गलत बात है। अवाम बाशऊर है, समझते हैं हर बात।
बिल्कुल, बहुत सही बात बोली।
वकार मदनी से, मैं एक चीज आसिफ आपको मैं कहूंगा, वकार मदनी के पास बहुत अच्छे फिगर्स होते हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट ने 3 साल 6 महीने के अंदर क्या अचीव किया है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इसको इतना मिसलीड किया है एंड प्रोग्राम्स लाइक द हेल्थ कार्ड। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वकार से कहें कि वो आपके ऑडियंस को, आपके व्यूअरशिप एंड जो भी और लोग हैं उनको ये बताएं कि क्या हासिल किया है पीएनएल।
बिल्कुल आपने सही कहा, अभी हम वकार साहब के पास चलते हैं, लेकिन उससे पहले 2-3 कॉलर हमारे साथ लाइनें फ्लैश हो रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
सर अस्सलाम वालेकुम, आसिफ भाई तनवीर बात कर रहा हूँ। हेलो
जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोले
आवाज आ रही है। तासीफ भाई के लिए, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई है, तब्दीली आई है, पीटी आई है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, हम तो आपके साथ हैं, कोई तब्दीली नजर आए तो हम तो आपके साथ हैं।
नहीं, कोई तब्दीली
हम
नजर
तो मुल्क के साथ हैं, हम किसी पार्टी के साथ।
एक और कॉलर को लेते हैं। हेलो
आसिफ भाई, सलाम वालेकुम।
जी आवाज आ रही है आपकी, जी बोले जी।
सलाम वालेकुम आसिफ भाई।
सलाम वालेकुम सलाम
आसिफ भाई, मैं आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ, मुझे होल्ड पर रखिएगा प्लीज।
नहीं आप बताइए, आप कुछ सवाल करना चाहते हैं?
नहीं नहीं, मुझे तौसीफ अच्छी तरह जानते हैं, मैं उनको सुन रहा हूँ, बस मैं सुन रहा हूँ भैया, सर चला रहा हूँ मैं, रेडियो सही चल रहा है, फोन किया है।
नहीं आप बाद में या तो सवाल कर लें या बाद में कॉल कर लें प्रोग्राम।
हमारे पास और कॉल है क्योंकि एक ब्लॉक हो जाएगी लाइन हमारी। एक और कॉलर को लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो
जी, लियो बंद कर दें तो आपकी आवाज आएगी जी। हेलो
हेलो
जी, आप सवाल करें। आसिफ भाई, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद जो है वो कंटेनर का एक शहर बदल चुका है, और वहां पर जाहिर है पीटीआई के जो वर्कर हैं वो एक जोश से, जज्बे से, वलवले से और अपने लीडर की चाहत में आ रहे हैं, वो उनका आना बिल्कुल हक बनता है। पुलिस जब उनके साथ ज्यादती करती है, पिछली दफा भी जब पीटीआई की हुकूमत थी मुजाहिरीन पे आपको याद होगा जो जो चीजें हुई थी वो अभी फिर हो रही है, और ये एक सिलसिला पिछले 50-55 साल से जारी है जिनमें शिद्दत पिछले 6-7 साल से आई है।
वो तो एक हुकूमत सही तरह से चल रही थी ना, तो आपने जबरदस्ती किसी हुकूमत को हटा दिया। नहीं, जुल्म क्या चीज होती है? जुल्म पता क्या कहलाता है? जुल्म के मायने ये होते हैं कि एक चीज है उसको अपनी जगह से हटा दिया जाए।
बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं, उनको हटाया ज्यादती की गई। अब ये बताएं, वो ये जो तहरीक है या मार्च है ये मौजूदा हुकूमत के खिलाफ है या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है?
मैं अभी लेता हूँ सवाल, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं एक कॉलर की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जनाब, बताइए
जी। तो सही साहब, आप हर बार कह रहे हैं कि इनका कोई कारनामा बताएं जनाबे वाला।
नहीं मैंने नहीं कहा था, मैंने नहीं कहा,
आपने यही कहा है इनका हेल्थ।
मैंने ये नहीं कहा था भाई, उन्होंने कुछ भी नहीं किया।
आप सुन लें,
आपका नाम क्या
है? महमूद अहमद। आप
ठीक है महमूद साहब, आपका सवाल ले लेते हैं, जवाब देंगे आप। बोले
साल से जो हुकूमत कर रहे थे वो हेल्थ कार्ड नहीं बना सके, इसलिए
ये तो बात मानने वाली है। यही तो मैं कह रहा हूँ, जो बात मानने वाली है।
और डैम बना दिए सर, और क्या आपको चाहिए?
जी जी जी,
हम सवाल करते हैं तो वकार मदनी के पास।
ये बात सही है, डैम के अलावा मैं और क्या?
आपके पास कुछ नंबर्स अवेलेबल हैं जो गवर्नमेंट ने अचीव किए थे और जो जुल्म हुआ और उनको हटा दिया गया, क्या अचीवमेंट करी थी उन्होंने, हमें जरा 2 मिनट टाइम है बताइए जी।
देखिए जो अचीवमेंट है उसमें हाईएस्ट, यानी हिस्ट्री का हाईएस्ट एक्सपोर्ट 32 बिलियन जो टच करेगा जून में, हाईएस्ट रेमिटेंस सिर्फ जो कि 18 बिलियन पे नवाज दौर में 31 बिलियन पे टच करेंगे, हाईएस्ट आईटी एक्सपोर्ट जो कि 675 मिलियन थे जो 1.7 बिलियन पे टच कर रहे हैं इस साल, हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन है जो कि 3,700 अरब से लेकर के वो इस पर 6,000 अरब से ज्यादा के टारगेट फिक्स अचीव करने जा रहे हैं। तो ये सारे हमारे हेल्थ कार्ड ले लें, एहसास प्रोग्राम जो पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में रिकग्नाइज किया गया। अब बात करता हूं मैं जो आसिफ साहब ने कहा ना कि फर्क क्या है, सर इस वक्त फर्क नैरेटिव का है। बयानिया जो है वो इमरान खान का बिक रहा है, अब उनके अपोजिशन और कुछ ज्यादा टाइम दे रहा है पाकिस्तान का पेड मीडिया कंपेयर टू इमरान खान के, लेकिन जो बयानिया है, जो नैरेटिव है, जो इमरान खान ने तशकील दिया है वो लोगों के दिलों को छू रहा है, जिसकी वजह से लोग बाहर आए, वो हकीकत पे मबनी है। इससे पहले जो बयानिया थे वो फेल हो चुके हैं। आप कह रहे हैं 11, इस वक्त तने ताना इमरान खान 11 पार्टियों का मुकाबला कर रहा है, 11 पार्टियों के बयानियों का मुकाबला कर रहा है, तो अगर अवाम उसके बयाने को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको पजीराई बख्श रहे हैं, तो ये वो
इंसान सर हम तो उसके मुखालफत कर ही नहीं रहे हैं,
ये आप कोई रोक नहीं सकता।
यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी कोई मुखालफत नहीं है पीटीआई से, जो चीज सही कर रहे हैं उसके हक में है।
वो रिवायती बयानिया नहीं चलेगा, बयानिया दुनिया बदल चुकी है, ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है, ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है।
सर हमने तो खुद ही कहा है कि 93 में नवाज शरीफ ने भी तो ट्रेन मार्च किया था, नवाज शरीफ ने बेनजीर के खिलाफ तहरीक चलाई थी।
तौसीफ भाई हमारे पास चार कॉलर हैं, इधर एक एक करके सवाल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम।
हेलो
जी, आपकी आवाज आ रही है भाई, बोलें।
जी तो आवाज आ रही है?
बिल्कुल आ रही है, आप बताइए सवाल कीजिए।
मेरा सवाल नहीं है, मैं सिर्फ जो है ना एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आप इस सारे सिनेरियो को देखें ना, ये जो कुछ हुआ है, ठीक है, वो जो खाता आया या जो भी हुआ उसके बाद, बेसिकली इसमें सबसे कामयाब इंसान इस वक्त कौन है? वो है आसफ जरदारी। और आसफ जरदारी ने मुस्लिम लीग नून से वो बदला ले लिया है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आने वाला दौर है वो इलेक्शन जो होगा ना, वो होगा पीपल पार्टी वर्सेस इमरान खान। ठीक है बिलावल, और आप देखें कि उसने बिलावल को वजारत खारजा दे के पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवा दिया, लॉन्च कर दिया उस आदमी ने। ठीक है, और ये नून वाले इतने कूफ हैं, ठीक है, उनको समझ ही नहीं आ रही।
नून वालों के लिए कहा जाता है कि चूंटी को लिपस्टिक लग सकती है, हाथी को गोद में बिठाया जा सकता है, मच्छर को कपड़े पहनाए जा सकते हैं, लेकिन नून लीव को मौकफ समझाया नहीं जा सकता। तो
यही तो बात है ना, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये ठीक है ना, आज के फर्ज है इस वक्त तक जो सबसे कामयाब आदमी है वो है जरदारी। ठीक है ना, ठीक है, इमरान,
ठीक है जी, आपका मौकफ आ गया, बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं जी, हम इसे एग्री करते हैं। सियासी पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें जो बड़े लोग टेक्निक यूज करते हैं जिन्होंने फवायद हासिल किए, उसमें कोई शक नहीं। जरदारी ने 5 साल हुकूमत भी अपनी चलाई थी, सदारत भी चलाई थी।
तौसीफ भाई माजर आजम भी तब्दील हुआ था। इंटरप्ट करने के लिए एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। जी सवाल ले लेते हैं उनका। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो
जी, सवाल कीजिएगा। जी सवाल कीजिएगा
जी। मैंने पूछना था तौसीफ भाई से, ये जो मीडिया के लोग हैं, जैसे अभी पीटीआई की गवर्नमेंट भी आई, 3.5 साल रही, कोई मीडिया के बंदे को कुछ अपॉइंटमेंट नहीं मिली, राइट? तो ये जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है, ये आपके मीडिया के जो लोग हैं, जैसे नजम सेठी हो गया, इरफान सदीकी, अताउल्लाह कासमी, अफ्तार आलम, और अभी साद हुसैन को मिल गई, ये होते क्यों? ये अच्छा, ये इनको आप क्या बोलेंगे? हाँ जी
जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बात ये है कि ये लोग वो लोग हैं जो सिर्फ मुस्लिम लीग को प्रमोट करते हैं, जो मुस्लिम लीग का बाजू बन जाते हैं, उसके एवज इनको ओहदे मिलते हैं। जो लोग एक साइड पर होते हैं, अभी ना पीटीआई के लिए भी बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। अब अगर एक
साइड
को सपोर्ट कर रहे हैं ना, नहीं सुने ना आसिफ भाई, पहले भी हमने कहा था, यहाँ पर भी हमें कई लोग कहते हैं, तो हम तो उन्हें कहते हैं भाई हमें तो यहाँ पे हमारे एड के पैसे नहीं मिलते, हमारे तो कुछ 300 से ज्यादा लोगों ने शहर में पैसे देने हैं, जो बड़े बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं इधर उधर, तो वो पाकिस्तान में 100% लोगों को फवायद दिए जाते हैं, मुस्लिम लीग ने दिए सबसे ज्यादा,
ठीक समझ गया,
लेकिन पीटीआई ने भी दिए, ऐसी बात नहीं है।
कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी
अस्सलाम
वालेकुम।
आप आवाज आ रही है, बोलिए सवाल कीजिए।
जी सवाल तो मेरा यही है कि जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है, तो ये भी कहा जा रहा है कि जरदारी साहब विन विन पोजिशन में है, बिल्कुल जरदारी साहब ने बड़ा अच्छा गेम खेला है और उन्होंने एक तीर से 2 शिकार कर लिए हैं, लेकिन बात सिर्फ यही है कि इसमें सबसे ज्यादा विन विन पोजिशन एस्टेब्लिशमेंट की है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी ये जो खिचड़ी पकाई थी कि इमरान खान को भी गंदा करेंगे और बाकी पार्टियों को, तो वो कर ही चुके थे, तो उसमें कामयाब हो गए। अब देखते हैं कि होगा क्या। बाकी रही बात कि नून लीग डैमेज हो जाती है अगर ये पंजाब की वजारत आला परवेज इलाही को मिल जाती, जो कि जरदारी साहब की प्लानिंग थी, वहां वो थोड़ा सा फेल हो गए और यही जो है वो नून लीग की बचत हो गई। तो आगे आने वाले दिनों में अगर पंजाब नून लीग के हाथों में रहता है, और बेसिकली तो शहबाज शरीफ या उनका बेटा उस मामले में ज्यादा
समझ गया आपका तब,
ये ठीक है बिल्कुल। परवेज इलाही का तो वैसे भी आज बयान ये है कि हम मईशत बचाने के लिए निकले हैं, उन्होंने दूसरा बयान ही अपना दिया है कि मईशत को बचाने के लिए हम निकलेंगे, और लोग निकले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लोग लीडर से या पार्टी से मोहब्बत करते हैं, इसमें करने का हक हासिल है, लेकिन आप दूसरे के मौकफ को ये कह दें कि आपकी लाइन या आपका स्टाइल वही है। अभी जिन साहब ने बात की ना अताउल्लाह कासमी की, इनकी मेरी खुद कासमी साहब से बात हुई थी, मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक भी रहा, यहाँ पे बात भी हुई, उन्होंने कहा बैनल से ये शिकवा किया था जी आप ऐसा क्यों करते हैं, उन्होंने कहा जी मैं समझता हूँ मेरे नजदीक ये पार्टी जो जो भी उनका मौकफ था उसको मैं मुनाफ़त नहीं करता, मैं बिल्कुल सामने रख के बात करता हूँ। बाकियों का मुझे अंदाजा नहीं।
चाह रहे हैं कि जरा सा हमारे जो पैनल है कराची और इस्लामाबाद में, हम उनके पास चलते हैं। तो अजीज साहब, इस नो कॉन्फिडेंस से सबसे ज्यादा क्या जरदारी साहब को फायदा पहुंचे आपके ख्याल में? जी
देखें, जरदारी साहब आई थिंक इसके अंदर पूरे गेम के अंदर इज वन ऑफ द मोस्ट श्रूडेस्ट पॉलिटिशियंस। उन्होंने अपने तौर पे नून को आगे करके एक तरीके से कोशिश की है कि पंजाब के अंदर अपने लिए जगह बना लें। अनफॉर्चुनेटली जो भी पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स होंगे, और एक जमाने में हम और आप सभी पीपल्स पार्टी के बहुत
हार्ड सपोर्टर्स होते थे,
हाँ, मगर अब मसला ये हो गया है कि जरदारी साहब पीपल्स पार्टी और असल पीपल्स पार्टी में बहुत फर्क है। वो आइडियोलॉजिकली जरदारी पीपल्स पार्टी वो भुट्टो या बेनजीर के पीपल्स पार्टी कहीं 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 भी नजदीक नहीं आती। ओवरसीज पाकिस्तानी को शायद अपनी पुरानी यादों की वजह से शायद पीपल्स पार्टी की अच्छी लगती हो, पर जरदारी की पीपल्स पार्टी बिल्कुल ही मतलब वो पीपल्स पार्टी को एक करप्ट पार्टी बना के रख दिया है, जिसके अंदर अद्दी और ये वो सारे टप्पी और अद्दी और इन लोगों के काम होते थे। अच्छा, कमिंग टू आपका कहना कि जरदारी को फायदा हुआ है, वो सिंध के अंदर ही होगा, मगर एक मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, बहुत बहुत वो है क्या कहते हैं, मैं आपको ये कॉन्फिडेंशियल न्यूज है, मगर चले कैनेडा के अंदर ब्रेक होगी तो हो जाए, ये बहुत इसका वो है, हो सकता है कि एक चीज होने वाली है। एज सून एज द इलेक्शन आर अनाउंस, एन अलायंस बिटवीन पीपल्स पार्टी शहीद ग्रुप एंड लेड बाय फातिमा भुट्टो, नॉट बाय गनबा भुट्टो, एंड द रियल भुट्टो एयरस विल बी देयर विद इमरान खान। अगर ये वाला अलायंस हो जाता है तो, और इंटीरियर सिंध के अंदर फातिमा भुट्टो जाकर अपने नैरेटिव को देती है, अपने नाना के नैरेटिव को लेकर चलती है, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा इमरान खान एंड फातिमा भुट्टो, फिर जरदारी साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा असली पीपल्स पार्टी और इमरान खान के मुकाबले में अपनी एक अद्दी और टप्पी वाली पीपल्स पार्टी को लेकर।
बहुत बड़ी खबर है ये, बहुत बड़ी आपने खबर शेयर करी है, और वाकई अगर ये ऐसा हो गया तो हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा, और ओरिजिनल पीपल्स पार्टी जो है वो अगर इमरान खान के साथ मिल जाती है। हमारा टाइम खत्म हुआ जाता है, हम चाहेंगे कि आखिर में एक मिनट वकार मदनी साहब से ये पूछ लेते हैं। वकार साहब, क्या पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध हुकूमत जो है ये समझती थी कि प्रोटेस्ट करने चले चाहिए, उनको रोकना नहीं चाहना चाहिए, उस पर वो अमल कर रही है इस वक्त?
देखिए आसिफ, ये बड़ा मैटर करता है कि इस वक्त मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कौन कौन अपना नैरेटिव बयान कर रहा है। पीपल्स पार्टी है तो जरूर शूट, जरदारी ने काम वाकई बिल्कुल, मैं मुतफिक हूँ अजीज साहब से और जो कॉलर जिन्होंने तो ये आइडेंटिफाई किया है कि खामोशी से उन्होंने वारदात डाल दी है, बड़ी बड़ी बारीक वारदात डाली है, लेकिन असल बात यह है कि इस वक्त पूरा आवाम जो है पाकिस्तान का वो इमरान खान और मरीम नवाज को देख रहा है। आसिफ, जरदारी बिल्कुल बैक एंड पे हैं और ये इनको इनको नुकसान पहुंचेगा इससे, और कराची के जो शहरी इलाके हैं, सिंध के जो शहरी इलाके हैं बिलखसूस, वहां पर पीटीआई की बेतहाशा सपोर्ट बढ़ेगी, और जब ये पंजाब से फारिग होकर सिंध में आएंगे इलेक्शन कैंपेन, तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचने का खतरा है इस दफा हकीकतन।
बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अजीज साहब इस्लामाबाद से, कराची से मदनी साहब और तौसीफ साहब, आप दोनों तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह घाय बगाय हम आपको प्रोग्राम में लेते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। इंसान अपनी जिंदगी में दो अहम फैसले करता है, एक घर वाली का और एक घर खरीदने का। घर खरीदने के लिए आपको मॉर्गेज चाहिए होता है, और मॉर्गेज के लिए आप कॉन्टैक्ट कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655। अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, तब भी आपको मॉर्गेज मिल सकता है, और कॉल कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655।
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
اونٹیریو میں ہر سال ہینڈ گن سے ہونے والے قتل کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اس دوران فوڈ کنزرویٹیوز نے ہینڈ گنز پہ پابندی لگانے کی ساری کوششوں میں رکاوٹیں ڈالی ہیں اور اونٹیریو لبرل سرکار ہینڈ گنز بیچنے، اپنے پاس رکھنے، ان کی ٹرانسپورٹ اور ان کی سٹوریج پہ پابندی لگائے گی. یہ ہمارا منصوبہ ہے، انتخاب آپ کا ہے. زیادہ ہینڈ گنز یا محفوظ کمیونٹیز.
آتھرائزڈ بائی دی سی ایف او آف دی اونٹیریو لبرل پارٹی.
ہر کسی ٹیم فور انٹرٹینمنٹ اینڈ ٹرانس 99 لاجسٹکس پریزنٹ اریجیت سنگھ لائیو ان کانسرٹ سیٹرڈے جون 11th ایٹ دا فرسٹ اونٹیریو سینٹر ہیملٹن. ان ایسوسیشن ود ٹرانس ایکسپرٹ آٹو بان روڈ لنک آر پی ڈی 24 میگنس فرنیچر اینڈ جی میڈیا گروپ. فار ٹکٹس وزٹ ٹکٹ ماسٹر ڈاٹ سی اے اور کال 905-793-1234. ٹیم فور انٹرٹینمنٹ پریزنٹس اریجیت سنگھ لائیو ان کانسرٹ.
ہیلو، میں ہردیپ گریوال تھوڑا برمپٹن ایسٹ تو پی سی پارٹی دا ایم پی پی کینڈیڈیٹ. چار سال پہلا تسی پریمیئر ڈگ فورڈ اتے پی سی پارٹی نو موقع دتا. ریزلٹ تھوڑے سامنے ہے. برمپٹن دے لئی نیو سیکنڈ ہاسپٹل، ایک نمی میڈیکل یونیورسٹی، سینئر دے لئی نمے لانگ ٹرم کیئر بیڈز، بلڈنگ ہائی وے 413. 2 جون نو اپنی قیمتی ووٹ پا کے مینوں ہردیپ گریوال نو کامیاب